Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
To usko phir sringar karti hai. बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। रुद्राक्षर वसिते न देव वपुषु भस्मी लगा देगी। आप लोग नाइसिल पाउडर लगा देते हो ना, भक्ति जननी को नाइसिल पाउडर तो मिलेगा ही नहीं है। भक्ति जननी के पास क्या मिलेगा? चिताभस्म मिलेगा भाई, है भसितम भस्मा चिताभस्मा लेपो सृगभ्य निर्करोति परिकर रुद्राक्ष ही ले। उस भक्त रूपी अर्भक को भक्ति रूपी जननी रुद्राक्ष पहना देती। रुद्राक्ष का अर्थ हो गया कि तुम दृष्टि से देखो, जिसको भी देखो उसी में रुद्र बुद्धि करो, शिव बुद्धि करो। रुद्राक्ष का अर्थ है भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बालक को रुद्र का नेत्र देती है, रुद्राक्ष लगा देती है। का मतलब हुआ कि तुम्हारे ये दृष्टि पैदा कर देती है कि तुम जो भी देखो वही परम शिव का अनुभव करो। दृष्टि में शिव भाव आ पाए, आ जाए। रुद्राक्षेर भसिते न देव बपुषो रक्षाम भवत भावना पर्यंके। कोई नजर न लगाए इसलिए मां उसके गाल में काला लगा देती है, लेकिन भक्ति जननी सफेद लगा देती है। क्या ललाट में भस्म लगा दी, दुनिया का क्या नजर लगेगा है? बोलो, शिवजी का नजर गले में पड़ा हुआ होगा तो दुनिया का नजर क्या लगेगा? हम अपने बच्चों को रुद्राक्ष तो लगा नहीं सकते, कहीं रुद्राक्ष पहना देंगे तो इसके प्रभाव से कल जोगी बनकर ना भाग जाए, तो बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहनाना चाहिए है? हम डरते हैं बच्चों को रुद्राक्ष पहना देने में। भगवान शिव की दृष्टि जहां रहेगी कि संसारियों की दृष्टि पड़ेगी उसमें और लगेगा नजर उसको। और भस्मी लगा दो, हा क्या कहना। त्रिपुंड भस्मी लगा दो, भक्त को रुद्राक्ष और भस्मी लगाना चाहिए हो शिव भक्त को। शास्त्र में तमाम भरा पड़ा है रुद्राक्ष और भस्मी की महिमा। भगवत भावना पर्यंके, उस भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बच्चे के हृदय में भगवान के भावना रूपी पर्यंक झूले में सुलाकर और शिव के दिव्य चरित्र रूपी गान करती है, लोहरी गाती है। भगवत भावना पर्यंके निवेश्य, पर्यंक माने झूला, कौन से झूला? भगवत भावना रूपी झूले में भक्त रूपी अर्भक को भक्ति रूपी जननी दूध पिलाकर नला धुलाकर नया कपड़ा पहनाकर रुद्राक्ष और भस्मी लगाकर एकदम सजा के उसमें सुला देती है और दिव्य भगवत चरित्र का श्रवण कराती है और बच्चा सोता नहीं जागता है। कहां? पर्यंक में। कौन से पर्यंक में? भगवत भावना रूपी पर्यंक में वो जागता है। भस्मी की महिमा तमाम शिव गीता है, अनेक स्तोत्रों में पुराणों में महिमा भरा पड़ा है भाई। नर्य भस्म समादाय विशुद्धम श्रोतियालयम अग्निरित्यादिवीर मंत्रेर अभिमंत्र्य यथा विधि उद्वलयति गात्राणि तेन चर्चति चार्चति मामपि तस्मात् परतरा भक्तिर मम रामन न विद्यते। भगवान शिव राम को समझा रहे हैं, हे राम कोई व्यक्ति हाथ में भस्मी लेवे और उस भस्मी को वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करे। भस्म को अभिमंत्रित करने का मंत्र है अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, तलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, वायुरिति भस्म, तलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंसी भस्मानि। ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र से इस भस्मी को अभिमंत्रित करो। फिर उसके बाद त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेखु त्रयायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् त्रयायुखम इति ललाटे कश्यपस्य इति जानुनी। भस्मी धारण करने की ये विधि है। आपको वैदिक मंत्र नहीं आता हो चिंता नहीं करना, हाथ में भस्मी लो और पानी मिलाओ, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करो और उसी पंचाक्षी मंत्री से तिलक धारण करो, भस्मी धारण करो। रुद्राक्ष और भस्मी सभी धारण कर सकते हैं, शास्त्र में ये बताया गया है, सभी को धारण करने का अधिकार है। सर्वदा शिरसा कंठे रुद्राक्षान् धारयतु यः पंचाक्षरी जप परः समे भक्त समे प्रियः। राम गीता में नहीं, शिव गीता में भगवान शिव कहते राम को। सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ललाट में कंठ में शिरसा सिर पे धारण करो और पंचाक्षर का जप करो। कौन कौन धारण करे? ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य ही शूद्रैरपि च शंकर ही। ब्राह्मण भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, क्षत्रिय लोग भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, वैश्य भी शूद्र भी और वर्ण संकर भी अंत्यज भी, सभी को भस्म धारण करने का रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। इतना जरूर है कि द्विजातीय जितने हैं वे लोग श्रोत्र भस्मी धारण करे, यानी उन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके भस्मी धारण करें, और द्विज इतर जो हैं वह लोग सामान्य भस्मी को सीधे पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करें। श्रोत्रम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानाम एव कीर्तनम अन्येषामपि सर्वेषाम् अपरम भस्म लौकिकम् धारणम् मंत्रतः प्रोक्तम् द्विजानाम् मुनिपुंगवैः కేవలం ధారణం విప్రా అన్నేషామపి కీర్తితం. సారీ భస్మధారణ ఆ రుద్రాక్ష ధారణకి మహిమ. భక్తి భీ శివ భక్తి భీ, యది భక్త రుద్రాక్ష ఆర్ భస్మ ధారణ కర్తే హే శివ ఆరాధనా మే లగతా హై తో భక్తి బడా ప్రసన్న హోతీ హై. ఇస్ తరహ శంకరాచార్య జీ నే అప్నే ఆప్ కో ఏక్ బాలక్ కే రూప్ మే ప్రస్తుత్ కర్కే శివ భక్తి కో జననీ కే రూప్ మే ప్రస్తుత్ కియా. ఔర్ భక్తి జననీ కిస్ తరహ భక్త బాలక్ కీ రక్షా కర్తీ హై, కిస్ తరహ శృంగార కర్తీ హై, కిస్ తరహ స్నాన కరాతీ హై, కిస్ తరహ పాన కరాతీ హై, కిస్ తరహ భూఖ నివృత్తి కరాతీ హై, ఏ సబ్ ఇన్ శ్లోకో కే ద్వారా భావ వ్యక్త కియా. ఇస్లియే ఆప్ పూరి తరహ భగవాన్ శివ కే భక్త రూపీ బాలక్ బన్ జావో, సంభాలనే కా కామ్ భక్తి రూపీ జననీ కా హై, ఉస్కే జిమ్మా లగా దో, సబ్ కుచ్ వో సంభాల్ లేగి, ఫిర్ తుమే చింతా కర్నే కీ జరూరత్ నహీ. అబ్ ఏసే శివ భక్తో కా ఏక్ ఆధా ఉదాహరణ దే రహే హైం. ఇస్ శ్లోక్ కే ద్వారా 63వే శ్లోక్ కే ద్వారా ఏక్ ఐసే భక్త కా ఉదాహరణ దియా హై శంకరాచార్య జీ నే. దక్షిణ భారత్ కా భక్త హై యే. జిస్కో దక్షిణ కైలాస్ బోల్తే, శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాదేవ్ వహా కా యే ఘటనా హై. ఆప్ లోగ్ తో మూల కైలాస్ తో జాతే హో నా, ఉత్తర కైలాస్. శ్రీకాళహస్తీశ్వర కో దక్షిణ కైలాస్ బోల్తే. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆంధ్రప్రదేశ్ మే పడతా హై, ఆంధ్రప్రదేశ్ మే హై, ఇస్లియే దక్షిణ కైలాస్ ఆప్ లోగో కో పతా హై. తిరుపతి బాలాజీ జాతే హో నా, తిరుపతి బాలాజీ, తిరుపతి బాలాజీ సే 40 కిలోమీటర్ దక్షిణ కి తరఫ్ పడతా హై. తిరుపతి బాలాజీ సే సీదా యది మద్రాస్ జావు, చెన్నై జావు, తో ఉసీ రోడ్ పర్ ఏక్ పహాడ్ హై, వహా వో మందిర్ హై, ఉస్ మందిర్ కా నామ్ హై శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాదేవ్. శ్రీకాళహస్తీశ్వర్ ఉస్కో దక్షిణ కైలాస్ కల్తే హై, వో నదీ కి కినారే మే వో మందిర్ హై, పహాడ్ కి నీచే సువర్ణముఖి నదీ హై, నదీ కా నామ్ హై సువర్ణముఖి. వహా ఏక శివ కా పరమ భక్త హువా హై, ఉస్కే శివ భక్తో కి ఇతిహాస్ మే ఉస్కా నామ్ బడా విలక్షణ హై, భీల్ జాతి కా హై, జంగల్ మే రహనే వాలా భీల్ జాతి కా. ఉస్ భక్త కీ చరిత్ర కో శంకరాచార్య జీ నే యహాన్ స్మరణ కియా హై, కైసే భగవాన్ కీ శివ కే ఆరాధనా కియా ఉస్నే. మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కురుచాయతే గండూసాంబునిషేచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే కించిద్ భక్షిత మాంసశేష కవలం నభ్యోపహారాయతే భక్తి కిం న కరోత్యో వనచరో భక్తావతంసాయతే. అహో ఆశ్చర్య కి బాత్ హై, భక్తి క్యా నహీ కర్తీ హై, భగవాన్ కీ ప్రసన్నతా కే లియే భక్తి కుచ్ భీ కర్ సక్తీ హై, ఔర్ భక్తి సే ప్రేరిత హోకర్ వ్యక్తి యది భగవాన్ మే లగతా హై తో సర్వ దోష భీ నిర్దోష హో జాతా హై. భక్తి భావ కీ విశేషతా హై. कहते हैं कि मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चाए थे। वहां एक नियम उसके इतिहास में लिखा है, पहले मंदिर नहीं था कहते, सुवर्णमुखी नदी के किनारे शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, एक हाथी रोज आकर सुवर्ण नदी के से मुख से पानी भरता था और ले जाके शिवजी को चढ़ाता था, वही उसकी रुद्राभिषेक थी नित्य निरंतर। पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त रहा होगा, किसी प्रारब्ध के चलते उसको हाथी का शरीर में फिर जन्म लेना पड़ा, किसी प्रतिबंधक के चलते, जैसे आप लोग शिव पुराण में नहीं भागवत में सुनते हो ना, गज की बात, हाथी की बात, गजेंद्र की बात। पूर्व जन्म में कोई विष्णु का परम भक्त था, लेकिन किसी श्राप वश उसको हाथी बनना पड़ा, और जब वो विपत्ति में पड़ा तो उस समय कोई उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हुए, तो पूर्व जन्म का वो संस्कार जग गया और उसने उस सूंड से एक कमल तोड़कर भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मैं इस संकट में पड़ा हुआ हूं, आपकी आराधना और कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे मन की भावना है कि यही आपके लिए पूजा होवे, इतना करना था कि भगवान विष्णु की बड़ी कृपा हुई और उनकी रक्षा हो गई। इसी तरह के कोई वो हाथी था भगवान शिव का परम भक्त, जो ये संस्कार था शिवार्चना, वो प्रतिदिन सुवर्णमुखी नदी में जाता था, पानी सूंड से खींचता था, पहले अपने शरीर में डालता था, स्नान कर लिया तब तो उसके बाद फिर सूंड में पानी भरता था और चल के जाकर शिवलिंग के ऊपर वो सूंड से पानी छोड़ता था, भावना करता था कि मैं शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहा हूं। वाह, कहते हैं कि उसी समय एक करुड़ी मकड़ी, हिंदी में मकड़ी बोलते हैं, आप गुजराती लोग क्या बोलते हो, गर्व करोड़ियो बोलते हो, उर्ण नाभि संस्कृत में उर्ण नाभि बोलते हैं, है? मकड़ी बोलते हैं, है? वह भी पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त था, उसको लगा कि ये भगवान शिव खुले में हैं, उनको दिन में धूप लगता है, कितना तड़पते होंगे भगवान शिव। वह सुबह जाता था और अपने शरीर में से वो रेशा को धागे को निकालकर बढ़िया जाला चंदुआ बना के, ताकि भगवान को धूप न लगे, गर्मी न लगे। और हाथी जाता था दूसरे दिन तो फिर वो सब पानी डाल देता था, वो सब का मकड़ी फिर वो चंदुआ बनाता था रोज, दोनों के कंपटीशन चलती थी। कहते वहीं एक आदिवासी रहता था, उसको कहां से शिव पूजा का धुन चढ़ गया, भक्ति चढ़ गई। उसने कहा कि ये जानवर तो भगवान शिव की रक्षा माने आराधना में लगे हैं, हाथी और मकड़ी ही, हाथी जानवर जीव है पशु है और मकड़ी तो कीड़ा है, वो भगवान की इस तरह सेवा कर रहे हो, मैं तो इंसान हूं, मुझे तो और करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पूजा करने के और साधन तो है ही नहीं, मैं क्या करूं। क्योंकि आदिवासी भील था इसलिए उसके पास धनुष बाण था और तो कुछ था नहीं, तो रोज वो शिकार खेलता था, पशुओं को मारता था। तो पशुओं को मारने से पहले, मारने के बाद स्वयं खाने से पहले उस पशु का नरम सा भाग मांस का टुकड़ा हाथ में लेता था, देख लो किस लिए लेता था, नव्योपहारायते, भगवान शिव को नैवेद्य भोग लगाना है ना, इसलिए। अब रुद्राभिषेक कैसे करे, पूजा कैसे करे, गंडो सांबु निसेचनम पुररिपो पूरा रिपो माने त्रिपुरासुर के मारने वाले भगवान शिव, पूरा रिपु त्रिपुरासुर के दुश्मन, पूरा रिपु। दिव्याभिषेकायते, एक हाथ में तो धनुष्बाण है, एक हाथ में वो नैवेद्य है, मांस है, फिर पानी किस में लेके जाएगा, कैसे ले जाएगा? उसने हाथी को पानी ले जाते हुए देखा था, वो सीख लिया। हाथी जब अपने मुख से जूठा पानी चढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ा सकता हूं? नदी में गया और उसने मुख में पानी भर लिया, गंडू सांबू, गंडूक माने मुख, अंबु माने जल, वो करता था मुख में पानी भर कर ले आता था है? और भगवान शिवलिंग पर, श्री काला हस्तेश्वर शिवलिंग पर मुख का पानी चढ़ाता था। और हाथी के पूजा करने पर, दिन दिन रोज रोज पानी डालने पर उस शिवलिंग में काई जम गया था। उसको लगा अरे भगवान के तो हिरक देखो ऐसा गंदा हो गया कि हाथी रोज इतना पानी चढ़ाता है, सफाई करता नहीं है, है? अब उसने पूजा करने से पहले क्या किया, अपने पांव में जो जूता पहन रखी थी चमड़ी का, उसी से शिवलिंग में जमी हुई काई को वो खुरचने लगा, उसको घिस घिस कर उसको हटाने लगा। कौन वो आदिवास वनचरा आदिवासी हाँ। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कूर्चायते, शिवलिंग में जो जमी हुई काई थी वो पांव से जूते से, पांव के जूतों से वो घसता था, क्योंकि एक हाथ में तो नैवेद्य रखा है, एक हाथ में धनुष पकड़ा है और मुख में पानी रखा है, फिर क्या करे, तो उसका पांव खाली था, पांव से रगड़ने लगा, जोर जोर से रगड़ रगड़ के उसमें जमे हुए काई को वो हटाता था। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते, अब सब कुर्चन करने के बाद है क्या करता था, तो मुख का जो पानी है वो शिवलिंग के ऊपर, गंडो सांबोनिसे चनम पुरा रिपोर दिव्याभिषेकायते, भगवान शिव के लिए वही दिव्य अभिषेक हो गया भाई। किंचित भक्षित मांस लेस कवलम, मीठा है कि नहीं, नरम है कि नहीं, पहले जानने के लिए वो पहले खा लेता था कच्चा ही, वो तो कच्चा ही खाता था, जंगली था वो, उसमें से जो स्वादिष्ट था नरम भाग था वो कहते ये ठीक है शिव जी के लिए भोग लगाना। सवरी ने भी बैर खाती रही ना, कड़वा है कि मीठा है कि कैसा है, खाने के बाद उसको अच्छा लगा तो ये ठीक है मेरे राम के लिए, ये बैर ठीक है, जो स्वादिष्ट था वो अलग रखती थी, जो कड़वा होता था फेंक देती थी। उसी तरह ये शिव भक्त कन्नप्पा, उसका नाम था कन्नप्पा, दक्षिण भारतीयों का नाम ऐसे तो होता है ना, कन्नप्पा शिव भक्तों का उसका नाम था। किंचित भक्षितम, थोड़ा सा खाकर स्वाद चखने के बाद बढ़िया जो मांस का खंड था, किंचित भक्षित मांस शेष कवलम, वो टुकड़े को नव्योपहारायते, भगवान शिव के सामने रख देता था। हे भगवान मैं मंत्र तो जाता नहीं जानता नहीं हूं, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा मध्य पानीयम उत्तर पोषणम मुख प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम जलम समर्पयामि, ये सब तो जानता नहीं था। ये खाओ महाराज, ले जी यही खाओ, मैं ये खाता हूं आप भी यही खाओ, आप लोग भी तो यही करते हो ना, घर घर में शालिग्राम रखे हो, द्वारिकाधीश की प्रतिमा रखे हो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा, कृष्ण राधा कृष्ण की प्रतिमा रखे हो, छोटा सा शिवलिंग नर्मदेश्वर रखा होगा है? अब एकादशी के दिन आप भात नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे, भगवान को क्या भोग लगाते हो? मैं भले एकादशी करूं, भगवान को तो दाल भात पका के खिलाना चाहिए, करते हो है? खिलाते हो दाल भात पका कर? भगवान एकादशी नहीं करते हैं तो वो तो दाल भात खाने वाले हैं, इसलिए उनके लिए दाल भात पका देता हूं, मैं तो एकादशी करूंगा, ऐसा करते हो? तुम एकादशी कर रहे हो तो वही एकादशी के फलार भगवान को भोग लगाते हो, लगाते हो कि नहीं बोलो? और द्वादशी के दिन तुम दाल भात खाते हो तो वही दाल भात का ही भोग लगाते हो। तुम जो खाने के लिए पकाते हो वही भगवान को भोग लगाते हो कि भगवान से पूछकर अपने खाने के लिए पकाते हो? बोलो। वो आदिवासी भील जो खाता था वही ना भोग लगाएगा, और क्या है? वही भोग लगाएगा। किंचित भक्षित मांस लेस कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यहो वनचरम। अहो आश्चर्य की बात है, वनचरम जंगल में रहने वाला वो कन्नप्पा नामक भील जाति का आदिवासी, उसके पास कपड़ा नहीं, उसके पास घर नहीं, जंगलों में रहता था, पेड़ के नीचे सोता था, लेकिन शिव पूजा इस तरह किया करता था वो। तो एक दिन वो इसी तरह कर रहा था पूजा, उसके आगे चरित्र आएगा, इसमें नहीं आएगा उसका, लेकिन शिव पुराण में है, शिव भक्तों के इतिहास में वो चर्चा है। एक दिन वो अपने पांव के जूते से, पांव से शिवलिंग में जो मैल जम गया था उसको घर्ष रहा था, तो अचानक वहां से रक्त निकला, ब्लड निकला। तो एक हाथ में तो मांस था, मुख में पानी, हाथ में धनुष बाण, तो पांव से घस रहा था, रगड़ रहा था, तो अचानक रगत आ गया, ब्लड आ गया। अरे रे रे रे, रे। मैं असावधानी से, मैंने असावधानी की और भगवान शिव के आंख में चोट आ गया। ये तो आंख के, भगवान शिव के आंख फूट गए मेरे असावधानी से, क्या करूं? तो आज जो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग आई ट्रांसप्लांट करते हैं, वो उसको पहले ही पता था, उस कन्नप्पा को। उसने कहा कि अब क्या करें? तो बोले, अरे क्षमा करना भगवान, अपनी आंख निकाली और लगा दी। हाँ, अपनी आंख निकाल के जोड़ दिया वहीं, तो रक्त आना बंद हो गया। थोड़ी की देर फिर अब तो ठीक हो गया करके वो रगड़ रहा था शिवलिंग, दूसरी जगह से फिर रगत ब्लड आ गया, खून आ गया। अरे राम राम, दूसरा आंख भी फूट गया, अब क्या करूं? बोले, दूसरा आंख लगा देता हूं, और क्या, मेरा भले आंख चले जाए, भगवान के नेत्र नहीं जाना चाहिए। उसने दूसरे आंख निकालने लगी, लगा, बोले एक आंख तो मेरा पहले गया है, और दूसरा आंख निकालूंगा तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, लेकिन कहां पर लगाना है वो मुझे मालूम कैसे होगा? तो कहते हैं कि उसने अपने पांव के अंगूठा उस जगह पर पहले अड़ा दिया, यहां पर लगाना है। अड़ाकर उसने दूसरी आंख भी जब निकालने की कोशिश की, तो भगवान प्रकट हो गए, कहा कि हे भक्त, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, है? ये तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी, भक्त भक्ति क्या नहीं करते हैं भाई, है? भक्ति और भक्त मिलकर क्या नहीं करते है भाई? वही कहते मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कुर्चायते गंडू सामुनि से चनम पुरा रिपोर। यहां ये कहने का अभिप्राय यह है, भगवान की पूजा में भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा। हम लोगों की परिस्थिति क्या है, भगवान के पूजा की जो सामग्री में वस्तु की शुद्धता में हम ध्यान रखते हैं, और भावना जैसे भी हो, भावना इतनी दूषित है, सारे विकार हमारे भावना में भरी हुई है, खाली हम वस्तु की शुद्धता, भगवान को खाए बिना जूठा खाया हुआ भोग नहीं लगाना चाहिए, हम वस्तु पर शुद्धि पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावना हमारा जो इतना बिगड़ा हुआ है। और इस भक्त का वस्तु की शुद्धि पर विचार नहीं, उसकी भावना शुद्ध है। ये श्लोकों का अभिप्राय यह है कि भगवान की भक्ति करने वालों को भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा, जो तुम्हारे पास है उसी वस्तु से तुम शुद्ध भावना से भगवान की आराधना करो। भक्ति किम न करो त्यो बनचरो भक्ता वतंसायते, भगवान तो भक्ति के बस में रहते हैं। और आगे क्या कहेंगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सत्करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने।